धवला, पुस्तक नंबर 1, लेक्चर नंबर 17। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, सिद्धमणन्तमणिन्दिय मणुवममपत्थसोखमणवज्रम्, केवलपहोहणिज्य दुर्नयतिमिरञ्जिनम् नमः। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। अभी हम जो पहली पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 131 पर आ गए, 131। ये जीवस्थान नाम का जो ग्रंथ है, कहो या पहला खंड है, उसके अवतार के हमने विस्तार से चर्चा की थी। जीवस्थान कहाँ से निकला है, तो पहले उन्होंने द्रव्य श्रुति की बात की, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट में से अंग प्रविष्ट में 12 अंग है, 12वां दृष्टिवाद अंग है, उसमें से जो चौथा अर्थाधिकार है पूर्वगत, उसमें 14 पूर्व है, 14 पूर्व में से दूसरा अग्रायणी पूर्व लेना, उत्पाद और अग्रायणी पूर्व दूसरा है, अग्रायणी पूर्व 5वां है। तो एक पूर्व में वस्तु होती है, इसमें कितनी है तो 14, हर एक पूर्व में अलग अलग नंबर ऑफ वस्तु होती है, तो इसमें 14 वस्तु है, इस 14 वस्तु में से 5वीं चयन लब्धि है ना। ये तो हुई वस्तु में से, ये हुआ है क्या हुआ उसका प्रावृत हुआ। अभी उसमें क्या होते हैं प्रावृतक प्रावृतक नहीं, ये तो वस्तु हुई, चयन लब्धि तो वस्तु हुई, एक वस्तु में 20 प्रावृत है, वो कर्म प्रकृति प्रावृत 4 नंबर का है, कर्म प्रकृति प्रावृत में से वो प्रावृत है, उसमें प्रावृतक प्रावृतक 24 हो गए, तो उसमें 6 नंबर का जो है उसका नाम है बंधन। बंधन के 4 अर्थाधिकार है, पहला बंध है, फिर बंधक, बंधनीय और बंध विधान, इसमें से इसमें विषय कहाँ से लिया है, बंधक और बंध विधान में से लिया है। अब कहाँ से क्या क्या लिया है, तो बंधक में 11 अनुयोग द्वारा, तो 11 में से द्रव्य प्रमाण अनुगम लिया, फिर अभी जो
बंध विधान में चार है,
बंध विधान में प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अब इसमें से प्रकृति बंध को लिया पहले, तो प्रकृति बंध के 2 भेद किए, मूल प्रकृति उत्तर प्रकृति, मूल प्रकृति की बात नहीं करी, उत्तर प्रकृति में एकोत्तर प्रकृति बंध और क्या था वो अवोगाढ़ उत्तर प्रकृति बंध। हाँ, अभी एकोत्तर में से वो भाव प्रमाणानुगम लिया, उसके भावानुयोग में से भाव प्रमाणानुगम लिया, और बाकी जो 6 है वो इसमें से लिए। हाँ, अवोगाढ़ के भी 2 भेद किए थे ना उन्होंने, भुजगार और प्रकृति स्थान बंध। प्रकृति स्थान बंध के 8 जो अनुयोग है उसमें से 6 वहां से लिए, हमने वो पूरा टेबल बनाया था कल। ये अवोगाढ़ में से प्रकृति स्थान बंध में से उसके 8 कौन से है, सत प्ररूपना, सत क्षेत्र, स्पर्शन काल, अंतर, अल्प, वो तो उसमें से लिए 6। उसमें से क्या छोड़ा, तो द्रव्य और भाव उसमें से छोड़ा, द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण है ना, वो वहां से लिए। बंधक में से द्रव्य प्रमाण अनुगम लिया और एकोत्तर में से भाव प्रमाण अनुगम लिया और बाकी छह यहाँ से लिए। यानी जीवस्थान में ये आठ अधिकार चले गए, सत प्ररूपणा, क्षेत्र, स्पर्श, काल, अंतर, हाँ भाव और अल्प वो तो कहेंगे, और सत के बाद द्रव्य प्रमाण अनुगम कहेंगे, उसके ऑर्डर जो अलग होगी ना, हाँ वो अभी क्रम से जैसे आएगी हम देखेंगे उसको। अभी इतना तो हमने देख लिया है। अब यहाँ 131 पृष्ठ पर स्थिति बंध दो प्रकार का है उसकी बात यहाँ चली, हम प्रकृति बंध में से क्या कहाँ से निकाला वो बात देखें। तो मूल प्रकृति स्थिति बंध और उत्तर प्रकृति स्थिति बंध, उनमें से मूल प्रकृति स्थिति बंध का वर्णन स्थगित करके जो उत्तर प्रकृति स्थिति बंध के 24 संयोग द्वार है उनका कथन करते हैं। वे इस प्रकार है, अर्धच्छेद सर्वबंध। अर्धच्छेद का अर्थ मालूम है, उसका काल होता है ना अर्धच्छेद का, वो संख्या के अर्धच्छेद वो नहीं लेना है, अधा छेद यानी वो काल लेंगे अधा वाला। ये पेज प्रस्तावना की 66 नंबर के पेज निकालना, 66 प्रस्तावना नंबर 66
उधर से चार अर्थ नहीं दिया,
उसके अर्धच्छेद बताए, जगन्य स्थिति चोली का उत्कृष्ट स्थिति अर्धच्छेद यानी स्थिति बताई ना। पेज नंबर 66 पर एक चार्ट है, पहला में अर्धच्छेद सर्व नौ सर्व ये सब 24 भेद बताए वहां पर उत्तर प्रकृतियों के स्थिति बंध में, यानी वो जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति। यानी अर्धच्छेद क्या बताता है तो स्थिति को बताता है, ये सब आने वाली है बातें क्रम से आएंगी। हाँ कर्म बंध की स्थिति, क्योंकि स्थिति बंध का प्रकरण है ना यहाँ पर, ये विषय जाके आगे बताएंगे उसमें क्या क्या बातें आती है वो बात यहाँ बताने वाले हैं। यानी उसको अध्याछेदो कहते हैं, अध्या अध्याय ने काल वो हमको मालूम है, तो यहाँ स्थिति की बात है, कितनी स्थिति बनती उसको अध्याछेद कहते हैं, अर्धच्छेद। सर्वबंध नो सर्वबंध, अब इसके डिटेल्स तो हम बाद में, हमने वैसे ये हम बहुत बार पढ़े हैं, जैसे स्थितियों के सभी भेद है, उत्कृष्ट स्थिति बनती है ना, तो उसमें से कुछ परमाणुओं में मिनिमम स्थिति है, कुछ परमाणुओं में मैक्सिमम है, तो वो सभी भेद उसमें गर्भित है, उसको सर्वबंध कहेंगे। अनुत्कृष्ट बंधेगी तो उसको नो सर्व कहेंगे, फिर भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नाम अलग हो गए क्योंकि वो मात्र उतनी स्थिति को उत्कृष्ट स्थिति कहेंगे, परंतु बीच में सारे ही निषेक बनते हैं इसलिए उसको सर्वबंध कहेंगे। यानी जो उत्कृष्ट बंध में ही सर्वबंध होगा, अनुत्कृष्ट में नो सर्वबंध होगा, परंतु उसका कथन अलग अलग आ रहा है। तो ये सारे अनुयोग द्वार कौन कौन से, अर्धच्छेद यानी वो स्थिति कितनी है जगन्य उत्कृष्ट उसको कहेंगे, सर्वबंध नो सर्वबंध, उत्कृष्ट बंध अनुत्कृष्ट बंध, जघन्य बंध अजघन्य बंध, जो जघन्य नहीं वो सारा अजघन्य, सादी बंध अनादि बंध, सादी कैसे कहेंगे, जैसे साता साता वो तो असाता साता साता असाता सादी अनादि यानी सादी का होता रहता, और ज्ञानावरण में सादी बंध कब कहेंगे, श्रेणी उतरेगा तब बंध मिट गया है और फिर शुरू हुआ तो उसको सादी कहेंगे, प्रतिपक्ष की तो है शादी, परंतु जो ज्ञानावरणादि जो है या मिथ्या तो है उसका शादी कब कहेंगे, सम्यक तो के बाद फिर मिथ्या तो में आएगा, तो शादी बंध अनादि बंध। अभी जो अनादि बंध अनादि से बंधने वाली बहुत है ज्ञानावरण दर्शन ये सब अनादि के बंध रहे, ध्रुव बंध अध्रुव बंध, ध्रुव बंध है वो तो जो अभव्य है उनमें ये ध्रुव बंध है वो कभी रुकने वाला नहीं है, वो अध्रुव है फिर मिट सकता है फिर बन सकता है वो अध्रुव बंध। बंध स्वामित्व विचय यानी वो बंधने वाले जीव कौन है उसकी बात है, उसको बंध स्वामित्व विचय कहेंगे। बंध काल, बंध काल का अर्थ होता है लगातार बंधने का काल, बंधांतर यानी बंद हुआ, फिर बंद रुक गया, फिर दोबारा बंद होगा, तो उसको बंधांतर कहेंगे। बंध संकर्ष यानी एक बंद रहा है तो उसके साथ स्व यानी अपने स्वस्थान वाली कौन सी बनती है या परस्थान वाली कौन सी बनती है, उसको बंध संकर्ष कहते हैं। नाना जीवों की भंग अपेक्षा भंग बीचे यानी कितने जीव बांधने वाले हैं उसकी अपेक्षा उसमें भंग पड़ेंगे एक अनेक इस तरह। भागा भागानुगम यानी वो बांधने वाले सभी जीवों में से बंधक कितने अबंधक कितने उसकी चर्चा होगी।
भागा भागानुगम कितने
उसके कितने परसेंट है, कितने कितने वे भाग प्रमाण है, अनंत वे भाग प्रमाण है कि असंख्यात वे भाग प्रमाण है उसकी चर्चा होगी। परिमाणानुगम यानी संख्या बांधने वाले, देखो कभी कभी अनंत जीव है फिर भी हम उसमें अनंत बांधने वाले अनंत नहीं बांधने वाले कहेंगे, उसको अनंत भाग या एक भाग असंख्यात भाग कहेंगे, भले संख्या अनंत है असंख्यात भाग कह सकते हैं। परिमाण में उसका एग्जैक्ट प्रमाण होगा असंख्यात है कि अनंत है कि संख्यात जो कुछ है। क्षेत्रानुगम ये बांधने वालों ने कितने क्षेत्र में रोहे रहते हैं। स्पर्शनानुगम कालानुगम यहाँ जो काल बताया है ऊपर बंध काल बताया था यहाँ कालानुगम है नाना जीवों की अपेक्षा। अंतरानुगम ये भी नाना जीवों की अपेक्षा। भावानुगम और अल्प बहुत्वानुगम अब स्थिति बंध है उसमें भावानुगम में एक ही नहीं औदयिक भाव है वगैरह वगैरह कहेंगे वहां पर। इनमें ये बता ही दिया यहाँ अर्धच्छेद, अर्धच्छेद दो प्रकार का है जघन्य स्थिति अर्धच्छेद और उत्कृष्ट स्थिति अर्धच्छेद। इनमें जघन्य स्थिति अर्धच्छेद से जघन्य स्थिति निकली है और उत्कृष्ट स्थिति अर्धच्छेद से उत्कृष्ट स्थिति निकली है। सूत्र से सम्यक्तोत्पत्ति नाम का अधिकार निकला है और व्याख्या प्रज्ञप्ति से गति आगति नाम का अधिकार निकला है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये तो प्रकृति बंध संबंधी कहाँ से क्या निकला है वो तो बता चुके। प्रसारण जब 65-66 में लिखा था ना 102 पेज पर भी आया था वो 60,000 प्रश्न वाले व्याख्या प्रज्ञप्ति था। हाँ हमने वो निकाल कर वो संयुक्त उत्पत्ति सूत्र से बताया वो चार्ट गलत है यानी वो हाँ ये सूत्र से देखो दृष्टिवाद के कितने भेद है परिकर्मा सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत चुलिका वो चार्ट 66 पेज का प्रस्तावना वाला 66 पेज का चार्ट है। अभी अभी हम स्थितिबंध संबंधी बात कर रहे हैं ना। देखो उसके पहले के पेज निकालो जरा जो हम पढ़ चुके हैं 64 प्रस्तावना का 64 देखो शुरुआत से क्या लिखा है। 12वां अंग दृष्टिवाद है उसके पूर्वगत का उसका पूर्वगत ये उसका चौथा भेद है और पूर्वगत में दूसरा पूर्व है अग्रायणी पूर्व। अग्रायणी पूर्व में से पांचवी है चयन लब्धि क्योंकि एक पूर्व में ये 14 वस्तु होती है ना ये 14 है वो वस्तु है पांचवी वस्तु है चयन लब्धि उसको बोल्ड में लिखा है यहाँ पर। एक चयन अभी एक एक वस्तु है चयन लब्धि ये वस्तु है तो उसमें 20 पाहुड़ हो गए उसमें से चौथा चतुर्थ पाहुड़ है कर्म प्रकृति वो यहाँ 20 लिखे नहीं है 1-20 वहाँ होने चाहिए थे ने 1-3 लिखेंगे ये चौथा है फिर 5-6-7-8 ऐसे 20 ये पाहुड़ होगे बराबर है हाँ प्रावृत या पाहुड़ प्रावृत को ही पाहुड़ कहते हैं।
नहीं समझा नहीं मैं
देखो 20 पाहुड़ लिखे ना उन्होंने
हाँ।
उसके लिए ने उन्होंने 1-3 नहीं लिखे चौथा लिख लिया है ये हमको लिखना होता तो क्या कहेंगे चतुर्थ पाहुड़ लिखा है ना उसके पहले 1-3 लिखेंगे और बाद में हम 5 to 6 ... 20 लिखेंगे. ये क्या हुए, सारे प्रावृत हुए, पाहुड़ कहो या प्रावृत कहो, एक ही बात.
यानी चतुर्थ पाहुड़ लिखा है.
हाँ
वहाँ पर
ये बराबर है.
हाँ.
मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ.
क्या ऐड करने का बताया, समझा नहीं.
ऐसा लिखना है, चतुर्थ पाहुड़ लिखा है.
हाँ.
पर वो जैसे होना, पहले वो 1 से 14 वस्तु के लिए नंबरिंग डाले थे, वैसे इन्होंने पाहुड़ के लिए 20 नंबर नहीं डाले.
अच्छा.
और प्रावृत के प्रावृतक के 24 नंबर डाले हैं. तो यदि ये नंबर डालने होते तो क्या करते. देखो जहाँ उसमें चतुर्थ पाहुड़ लिखा है ना, ये देखो ऐसा करना, चतुर्थ पाहुड़ के पहले 1 2 3 मैंने नंबर डाले और आगे 5 2 6 20, ये प्रावृत हो गए. ये चौथा ये है. यानी जैसे उन्होंने ऊपर 14 वस्तुओं के नंबर डाले हैं और उसके नीचे नाम लिखे हैं, वैसे यहाँ 20 नंबर डाल के चौथे का नाम है कर्म प्रकृति प्रावृत. समझ में आई बात. अब चौथे में 24 भेद किए, इन 24 को हम प्रावृतक कहेंगे. कर्म प्रकृति तो चौथा था, अभी चौथे के 24 भेद हुए, ये प्रावृतक. इसमें जो छठवा है उसका नाम है बंधन. ख्याल में आई यहां तक बात. हाँ, छठवा बंधन है. अब ये बंधन में से ये जो है ना, ये सब अल्प बहुत तक कृति वेदना स्पर्श कर्म प्रकृति वगैरह बंधन, ये 6 नंबर का जो है उसमें ये हमारा बंधन है. ये सब हमने नाम देखे थे, ये भी 24 संयोग द्वार है. ऊपर जो 24 है वो प्रावृतक के नाम है.
हाँ,
उन्हीं के ये नाम है, 24 नाम उन्हीं के हैं. उसमें से जो छठवा है वो बंधन है. हाँ, उन्होंने केवल वो 20 को अलग से नहीं लिखा, बस इतनी बात मैं बताना चाहती हूँ. अब ये बंधन में से बंधनीय बंधक बंध विधान बताया. इन्होंने बंधक को सेकंड नेम पर नहीं लिया, बंधक और बंध विधान में से निकालना था ना, इसलिए दोनों को अलग लिखा और बंध बंधनीय पहले रखा. तो उसके आगे हमने अभी जो देखा था बंध विधान का 65 पेज पर है. वो उसकी बात अभी नहीं निकली, वो अलग अलग खंड कहाँ से निकले हैं. हम किसकी चर्चा कर रहे थे अभी तक, जीव स्थान की. वो पहला खंड है, पहले खंड का अवतार कहाँ से हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं. उसमें से भी कौन से अनुयोग कहाँ से निकले उसकी चर्चा हो रही है. तो ये बंधक में से हमने देखा था, अभी हमने उसमें 71 वगैरह वगैरह भेद देखे थे ना, उसमें से द्रव्य प्रमाणानुगम वहां से निकाला है. अब 65 पेज पर मैंने बंधक के 11 अनुवेग अनुयोग द्वार में से पांचवा द्रव्य प्रमाणानुगम, वहां से हमने जीव स्थान का जो संख्या प्ररूपणा का उद्गम वहां से हुआ, जीव स्थान के संख्याओं का उद्गम वहां से हुआ. अभी जो हमने आते ही जो बात देखी ना, उसी को फिर दोबारा देख रहे हैं. बंध विधान 65 नंबर का पेज है प्रस्तावना का, उसमें प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध लिखा. प्रकृति बंध के मूल उत्तर भेद किए, उत्तर में 71 और अवोगाढ़ किए. एकोत्तर के 24 संयोग द्वार बताए, उसमें से 23वां भाव जो लिखा है उसमें भाव प्ररूपणा ली है, वो जीव स्थान का 7वां अधिकार है। अवोगाढ़ में से जमीन के नीचे उसके भेद किए, भुजगार प्रकृति स्थान, प्रकृति स्थान में 8 थे, 8 में से यहाँ भाव को छोड़ा और दूसरे संख्या को छोड़ा। पहला सत लिया, क्षेत्र लिया, स्पर्शन, काल, अंतर और अल्प बहुत्व, ये जीवस्थान के 6 अनियोग द्वार हुए। यानी जीवस्थान ये जो पहला विषय है, पहला खंड है, उसमें 8 अधिकार हो गए। पहला वो सत प्ररूपणा, दूसरा है वो संख्या, उसी को द्रव्य प्रमाण अनुगम भी कहेंगे, तीसरा क्षेत्र, चौथा स्पर्शन, पांचवा काल, फिर अंतर, फिर वो भावानुगम भाव प्ररूपणा वहां से लिया है, जीवस्थान का 7वां अधिकार, हाँ एकोत्तर में से लिया था, और लास्ट वाला अल्प
बीच में उसमें प्रकृति स्थान के 8 भेद बताए,
हाँ
उसमें से 2 और 6, 7
नहीं, 2 और 7 को निकाला,
निकाल दिया, बाकी के
हाँ बाकी लिए
6,
2 वाला है वो बंधक में से लिया और 7वां है वो एकोत्तर में से लिया। यहाँ तक बात ख्याल में आई, जीवस्थान के खंडों के अभी अन्य खंड है ना, उनका उद्गम तो बाद में बताएंगे, अभी जीवस्थान की बात चल रही है, उन्होंने यह तो पूरा चार्ट बताया है। हमने कौन कौन से खंड देखे थे, 6 खंड के नाम के भूल गए, हाँ थोड़ा थोड़ा देख लो, 73 पेज पर, 773 वो खुद्दा बंद है ना। अब देखो अभी आपको, अभी वो विषय बाद में आएगा, अपन 64 पेज पर देखो प्रस्तावना के, ये खुद्दा बंद दूसरा खंड है, वो बंधक में से निकाला है,
64 पेज
हाँ। बंधक के नीचे खुद्दा बंद खंड 2 लिखा है, बराबर
नहीं मिला,
बंधक जहाँ लिखा
हाँ, हाँ,
है
हाँ,
वहाँ खुद्दा बंद खंड 2 लिखा है,
बराबर।
अभी यहाँ 65 पेज पर एकोत्तर में से बंद स्वामित्व विषय जो है ना 12वां, उसमें से खंड 3 निकाला है, बंद स्वामित्व ही उसका नाम है। चौथा वेदना खंड है हाँ, वो कर्म प्रकृति प्रावृत के 1, 2, 3, 4 जो है कृति वेदना स्पर्शन, कृति और वेदना में से वेदना खंड निकाला, कृति और वेदना में से वेदना खंड चौथे नंबर का, उसका नाम ही वेदना खंड है। वर्गणा खंड जो है 5वां हाँ, वो स्पर्श कर्म और प्रकृति नाम के कर्म प्रकृति के भेद है वहां से, और वो आगे वाला भी कुछ उसमें कवर किया है, ये वर्गणा खंड इसमें आ जाता है। महाबंध वाला जो है ये पूरा ही लिया, निबंधन से लेकर अल्प बहुत्व तक, और वो बंध विधान वगैरह वो उसको भी ले लिया उसके साथ, ये महाबंध है पूरा है, उसमें बंध की सभी बातें हैं, ये 6 खंडों के। अभी हम कंसर्न है मात्र जीव स्थान से,
उनके प्रश्न का उत्तर आ गया,
जीव स्थान का जो प्रथम खंड है उसी की बात चल रही है यहाँ पर। अब देखो अभी हम जो पढ़ रहे हैं स्थिति संबंधी वगैरह 66 पेज,
एक मिनट,
प्रस्तावना का 66 नंबर का पेज,
दो खंड, एक खंड की बात ही इसमें,
अरे ये जीव स्थान की तो बात चल रही है, पहला
इसमें नहीं लिखा, अच्छा
लिखा है ना जीव स्थान का
हाँ। यहाँ पर जैसे खंड 2
देखो यहाँ लिखा है जीवस्थान की 5 चुल्लिकाएं, और जीवस्थान का 7वां अधिकार, जीवस्थान के 6 नियोग द्वार,
अच्छा।
वो जीवस्थान के लिए खंड 1 ऐसा नहीं लिखा
हाँ।
वो आप समझ लेना चाहिए, लिख लो आपकी समझने के लिए। और यहाँ एक और करेक्शन है 65 पेज प्रस्तावना का, प्रस्तावना का नंबर 65, वो चार्ट जहाँ बनाया है। तो देखो ये समुद्र कीर्तन है ना, एक नंबर वाला बीच में जो 24 नाम है उसमें से समुद्र कीर्तना, उसके भेद क्या बताएं, प्रकृति, यहाँ स्थिति नहीं होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। फिर तीन महादंडक है,
दंडक एकदम तीन,
हाँ अब आना 66 नंबर का चार्ट। अभी बंदर विधान में प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश की बात करें, स्थिति के मूल और उत्तर दो भेद की, मूल प्रकृति के स्थिति बंदर, उत्तर प्रकृति का स्थिति बंदर। उत्तर प्रकृति स्थिति बंदर में 24 संयोग द्वार बताए, अभी उनके नाम अभी अभी हमने देखे। अर्धच्छेद में जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति बात बताई। अब ये जो संयुक्तोत्पत्ति चूलिका नाम का जो है वो कहाँ से निकाला, तो चार नंबर का चार्ट अलग है, ऊपर के चार्ट से उसका कुछ नहीं लेना देना। वो दृष्टिवाद नाम का चार नंबर डाला है ना, वो चार्ट अलग है। यानी 12वें अंग की जो दूसरा सूत्र नाम का जो है उसमें से संयुक्तोत्पत्ति चूलिका निकली है, परिक्रम के नीचे वो लाइन में बताए वो नहीं, वो लाइन निकाल कर वो करेक्शन है, वहां सूत्र के नीचे वो आना चाहिए, वो सूत्र का भेद है। उसके नीचे पांचवा जो चार्ट बताया है, व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का जो पांचवा अंग है, हाँ वहां से सूत्र में से निकाल। अब ये गति आगति की जो चूलिका है वो व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग में से निकाली।
मुझे एक प्रश्न पूछना है,
हाँ
इसमें चूलिका 6, 7, 8 ये बताया, तो बाकी की पहली पांच चूलिका कहाँ गई,
क्या 6, 7, 8
पेज नंबर
चूलिका से, चूलिका 6, 7
जघन्य स्थिति के नीचे चूलिका 6, उत्कृष्ट स्थिति के नीचे चूलिका 7, यहाँ संयुक्तोत्पत्ति के नीचे 8, गति आगति के नीचे 9, तो पहले पांच चूलिका कौन सी, ये
जीवस्थान की पांच चूलिका, ये प्रकृति स्थान दंडक जो अभी हमने करेक्शन किया था ना, नीचे जो बताए वो अनुयोग द्वार थे और ये चूलिकाएं हैं। ये केवल वो गति आगति संबंधी चूलिका वहां से निकाली है डायरेक्ट, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग में ये पांचवा वो अंग है, इसका अंग भी है और दृष्टिवाद का भी एक भेद था। दृष्टिवाद का नहीं, वो परिक्रम सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत चूलिका है ना, व्याख्या प्रज्ञप्ति उसमें भी देखे थे हमने, दो जगह आई थी व्याख्या प्रज्ञप्ति, एक अंग का भी नाम है और मेरे ख्याल से परिक्रम में था, कहाँ था वो जरा देख लो, परिक्रम में ही था ना पांचवा भी, चंद्र सूर्य व जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, हाँ द्वीप सागर और वो व्याख्या प्रज्ञप्ति, तो ये अंग में से ही निकला है गति आगति। गति आगति में कौन कहाँ जन्म लेता है वगैरह वो सब गति आगति की बात है, कौन कहाँ जाता है कहाँ से आता है। चलो अभी आना अपने पेज पर, कौन से अधिकारों का ओरिजिन कहाँ है वो बात यहाँ बता रहे हैं। हम पढ़ रहे थे 131 पेज पर, सूत्र से सम्यक्तोत्पत्ति नाम का अधिकार निकला है और व्याख्या प्रण्यप्ति से गति आगति नाम का अधिकार निकला है। ये सब चुलिका नाम की छठी पुस्तक है, उसमें ये सारा विषय है। अब छठी पुस्तक में चुलिका की पुस्तक है। अब नौ चुलिकाओं का उत्पत्ति क्रम बताते हैं। पहले जो एकोत्तर प्रकृति अधिकार के समुत्कीर्तना नाम के, अभी मैंने बताया था ना आपको प्रस्तावना में, प्रथम अधिकार से
65 है।
हाँ, प्रकृति समुत्कीर्तना, स्थान समुत्कीर्तना और तीन महादंडकों के निकलने का उल्लेख कर आए हैं। उन पांचों में अभी ये जो पांच बताए ना, जीवस्थान की पांच चुली का है जिसको कहा, यानी उसको क्या कहेंगे, प्रकृति समुत्कीर्तना, स्थान समुत्कीर्तना, समुत्कीर्तन है उसका कथन है ऐसा कहेंगे, ये उसे स्थानों के नाम बताएंगे। उन पांचों में अभी कहे गए जघन्य स्थिति अर्धच्छेद, उत्कृष्ट स्थिति अर्धच्छेद, सम्यक्तोत्पत्ति और गति आगति, इन चार अधिकारों के मिला देने पर, यानी वो तो पांच अधिकार हुए, कौन से, प्रकृति समुत्कीर्तना, स्थान समुत्कीर्तना और तीन महादंडक, पहला दूसरा और तीसरा, ये पांच हो गए। और उसमें जघन्य स्थिति अर्धच्छेद, उत्कृष्ट स्थिति अर्धच्छेद, इसको 6-7 नंबर डालेंगे, आठवां है सम्यक्तोत्पत्ति, नौवां है गति आगति, इन चार अधिकारों के मिला देने पर चुलिका के नौ अधिकार हो जाते हैं। इस समस्त कथन को मन में निश्चय करके भगवान पुष्पदंत ने एत्तो इत्यादि सूत्र कहा है। एत्तो ये पेज नंबर 92 पर देखा था, एत्तो सूत्र वहां आया था, मैंने वहां से शुरुआत हुई थी ना अपनी, पहला तो सूत्र नमोकार मंत्र का था और ये दूसरा क्या था देख लो, एत्तो, यानी इस द्रव्यश्रुत और भावश्रुत प्रमाण से, इससे यानी इतना सब उसके पीछे है। इमेसिम चौदसनम जीव समासनम मंगण ठय तत्थ इमानी चौदस चेवठानी नादवानी भवंती, यानी इससे यानी यहाँ से, या ये पूरा जो उन्होंने बताया था उद्गम उसका कहाँ से हुआ है, इससे इन 14 गुण स्थानों के अन्वेषण रूप प्रयोजन के होने पर वहाँ ये 14 ही मार्गणा स्थान जानने योग्य है। ऐसे उन्होंने वो कहाँ से निकला विषय उसकी बात की। आते अभी 132 पेज पर। अब एत्तो इत्यादि सूत्र में, यानी वो एत्तो वाला जो सेकंड नंबर का सूत्र है 92 पेज पर, अभी हमने बताया वहां लिखते है इमेसिम, इमेसिम यानी इन, इनकी पद आया है, उससे जो प्रत्यक्षीभूत पदार्थ का निर्देश होता है, क्या कहना चाहते हैं, जरा टेढ़ी मेढ़ी भाषा है ना, हमने जो यह पेंसिल, यह का अर्थ क्या होता है, वह नहीं कहा, यह कहा, यह बताता है वो सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को विषय करें उसको ये सर्वनाम कहते ना हमने, यह अभी कहते ये या इनकी, देखो इमेसिम पद आया है उससे जो प्रत्यक्षभूत पदार्थ का निर्देश होता है, निर्देशन कथन होता है, यह जो हम सर्वनाम जोड़ते हैं किसके लिए, जो सामने प्रत्यक्ष है उसके लिए, इसलिए कहते प्रत्यक्षभूत पदार्थ का निर्देश होता है ना कथन होता है, वह अनुपपन्न नहीं है, यानी वो अवेलेबल नहीं है ऐसा नहीं है, उपपन्न है ना वो है, क्योंकि जिनकी आत्मा आगम अभ्यास से संस्कृत है, संस्कृत यानी संस्कारित है, यानी जिन्होंने आगम का अभ्यास किया है, ऐसे आचार्य के भाव रूप 14 जीव समास प्रत्यक्षीभूत है, यानी वो आचार्य के ज्ञान में 14 जीव समास या गुण स्थानों की बात है, वो उनके प्रत्यक्ष है, यानी उनके ज्ञान में वो प्रत्यक्ष जान रहे हैं, इस तरह से प्रत्यक्ष है ना, वो आगम का अभ्यास से उन्होंने जान लिया है। ख्याल में आई बात, इसलिए इन शब्द उन्होंने वापरा। अतएव इमेसिम इस पद के, पद यानी शब्द, पद के प्रयोग करने में कोई विरोध नहीं आता। देखो ये जो एक सूत्र लिखा जाता है और उसके एक एक शब्दों के ऊपर इतनी चर्चा, इतना वहापोह होता है, तो सूत्र उसी को कहते हैं मिनिमम पॉसिबल अक्षरों में, शब्दों में भी नहीं अक्षरों में, मैक्सिमम पॉसिबल में। अभी एत्तो में से कितना निकाला, 92 पेज से 131 पेज तक एत्तो की बात बताई, ख्याल में आई बात। अनंतानंत जीव जिनमें संग्रह किए जाए उन्हें जीव समास कहते, समास ने उसका सब ग्रुप कर दिया, संग्रह कर दिया, वे जीव समास 14 है, यानी उनमें कुछ क्राइटेरिया लगाया और उनके 14 भेद कर दिए।
पर्याप्त पर्याप्त लेना जीव समास,
नहीं नहीं, यहाँ का गुणस्थानों को समझना, यहाँ जीव समास शब्द जो है गुणस्थान के लिए वापरा है उन्होंने।
अच्छा लिखा है 14 जीव समास होंगे यहाँ पर, 14 गुणस्थान,
वे जीव समास 14 है, उन 14 जीव समासों से यहाँ पर 14 गुणस्थान विवक्षित है, गुणस्थान के लिए समास जीव समास शब्द आया है, अर्थात जीव समास का अर्थ यहाँ पर गुणस्थान लेना चाहिए, यहाँ पर। हाँ, मार्गणा, गवेषणा और अन्वेषण, ये तीनों शब्द एकार्थवाची, यानी खोज, गवेषणा करना, मार्गणा करना, अन्वेषण करना, यानी क्या, खोज करना, मार्गणारूप प्रयोजन को मार्गणार्थ कहते हैं, जीवों की खोज करनी है ना हमको, उनका अन्वेषण करना है, अर्थात मार्गणारूप प्रयोजन के भाव अर्थात विशेषता को मार्गनार्थता कहते हैं। वो सूत्र जरा देख लेना फिर से, 92 पेज का, वहां क्या लिखा था देखो, इत्तो इमेसिम का अर्थ है 14 सन्नम जीव समासाणम, यानी 14 गुणस्थान, मगनठदाये यानी मार्गनार्थ, मार्गनार्थता के लिए, यानी क्या, मार्गनार्थ है ना, उसके अन्वेषण रूप प्रयोजन है उसके लिए, इसलिए उसको कहा मगनठदाये। उस मार्गनारूप प्रयोजन विशेष की विवक्षा होने पर यहां पर इसी अर्थ में तथ्य यह पद आया है, होने पर वहां, वहां यानी वो प्रयोजन के लिए, इमानी, इमानी फिर लिखा ना तथ्य इमानी, इमानी यानी फिर ये है इसे प्रत्यक्ष भूत, इस पद से प्रत्यक्षीभूत भाव मार्गणा स्थानों का निर्देश किया गया। द्रव्य मार्गणाओं का ग्रहण नहीं किया, क्योंकि द्रव्य मार्गणाएं देश काल और स्वभाव की अपेक्षा दूरवर्ती है। 132 देखो, पहले इत्तो की बात की, फिर इमेसी की बात की, अभी आपको बताना है, अभी मैं फिर से पढ़ती हूँ, मार्गनार्थ तक पढ़ा, ख्याल में आया, नीचे से सातवीं लाइन से फिर दोबारा पढ़ूंगी, मार्गनार्थ अर्थात मार्गनारूप प्रयोजन के भाव अर्थात विशेषता को मार्गनार्थता कहते हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं हम, मार्गणा के लिए, खोज के लिए अनंतानंत जीव कहाँ किस भाव रूप से स्थित है उसके लिए खोज कर रहे हैं। तो ये मार्गणारूप प्रयोजन विशेष की विवक्षा होने पर यहाँ पर इसी अर्थ में तथ्य यह पद आया है, यानी मार्गणारूप प्रयोजन के होने पर, ऐसा उसका अर्थ है तथ्य, यानी ऐसा होने पर वहां इमानी, फिर ये प्रत्यक्ष बात आई। पर प्रत्यक्ष ने वो जीव सामने ऐसा नहीं लेना, वो भाव वो प्रत्यक्ष है, उस संबंधी जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। तो इमानी इसलिए कहते वहां द्रव्य मार्गणाओं का ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि द्रव्य मार्गणाएं देश काल और स्वभाव की अपेक्षा दूरवर्ती है। मैंने वो जीव लेना, साक्षात जीव लेना जिनके ये गुणस्थान है। देखो मार्गणा फिर से देखो यहाँ बात क्या, ये 14 मार्गणा स्थान जानने योग्य है। मार्गणा स्थान कौन कौन से है बोलो, आप नाम बताओ 14 के 14। हाँ 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 हाँ, तो ये जो हम मार्गणा है वो ऐसे सभी सामने नहीं हमारे जीव, अल्पज्ञानी उसको जान भी नहीं सकेगा, समझ में आई है। परंतु वो भावों में प्रत्यक्ष है, इसलिए ईमानी कह दिया। ऊपर क्या बताया था, आचार्य इसको साक्षात जान रहे हैं, ऊपर भी इमेसिम शब्द आया था, वैसे यहाँ ईमानी शब्द डाल दिया। वो भाव में तो प्रत्यक्ष है उनके, वो मार्गणा वाले सभी जीव सामने अभी अल्पज्ञानियों के सब प्रत्यक्ष नहीं है। ये जो मार्गणा के भेद है, गति वगैरह और उसके भेद के भेद है, जिसे गति मार्गणा के 4 भेद है, वो कहाँ है साक्षात नार के, यहाँ पर देव कहाँ दिख रहे आपको। पर ये प्रत्यक्ष है नहीं, वो तो ज्ञान में प्रत्यक्ष है ना, उसके भाव की अपेक्षा प्रत्यक्ष है, ये कहना चाहते हैं। देश यानी उसका क्षेत्र, यानी वो सभी मार्गणाएं आपको प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं हो सकते, यानी वो हम आगम से उसको जानते हैं। ये मार्गणाओं के जो भेद है, जैसे गति मार्गणा के 4 भेद हैं, इंद्रिय मार्गणा के इतने भेद हैं, काय मार्गणा के भेद हैं, वो तो आपको आगम से आप जान रहे हैं। तो भाव की अपेक्षा प्रत्यक्ष ने आचार्य उसको प्रत्यक्ष जान रहे, उसने आगम से जान लिया है। परंतु उसके भेद प्रभेद उसको धारक जो जीव है, वो तो हमारे अल्पज्ञानियों का नहीं भी हो सकता विषय, क्योंकि उसमें तो केवल वो जीव को ही नहीं लेना है ना, उसके ज्ञान के भी भेद लिए, कषायों के भेद लिए, लेशाओं के भेद लिए, वो कहाँ प्रत्यक्ष है। आपको कोई जीव को देखकर वो कृष्ण लेशा वाला है कैसे समझ में आएगा। हाँ, इसलिए भाव की अपेक्षा प्रत्यक्ष है, देश काल स्वभाव की अपेक्षा दूरवर्ती है। अतएव अल्पज्ञानियों को उनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, वे मार्गणास्थान 14 ही है, ही लिखा है ना यहाँ सूत्र में, जो एवं पद दिया है। उसका फल या प्रयोजन, एवं नहीं है, एव होना चाहिए, ऊपर क्या है, तानिच एव कार, प्रतिषेध फल एव कार, सूत्र में भी एव शब्द है। इमानी 14 चेव, चेव ने च एव, और अभी ऊपर प्राकृति में भी तानि च मार्गणस्थाने चतुर्दश एव भवन्ति, मार्गणस्थान संख्याया न्यूनाधिक भाव प्रतिषेध फल एव कार, यानी एव पद लिया है, एवं ने एव, एवं का अर्थ होता है इस तरह, और एव का अर्थ यही। यदि नहीं, यही ही लगाते, यही भी नहीं, ही एव ने ही, 14 ही होते हैं, 14 से एव, यानी 14 ही है, उसका अर्थ क्या है, कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, इसलिए एवं नहीं होना चाहिए, एव चाहिए था। उसका फल या प्रयोजन मार्गणा स्थान की संख्या के न्यूनाधिक भाव का निषेध करना है, यानी मार्गणा 14 ही होती है, ना कम होती है ना ज्यादा होती है, उसमें से निकला। सूत्र का एक एक शब्द निकालकर उसमें से इतना उन्होंने सभी भाव, एक तो शब्द पर इतना चर्चा की जो हमने सारे आगम का ओरिजिन देखा कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, फिर बाकी एक पैराग्राफ ने बाकी सभी शब्दों की चर्चा कराए। अब शंका, मार्गणा किसे कहते हैं? सत संख्या आदि अनुयोग द्वारों से युक्त 14 जीव समास जिसमें या जिसके द्वारा खोजे जाते हैं उसे मार्गणा कहते हैं। अब यहाँ जीव समास में तो यहाँ पर गुणस्थान को ही ले लिया है, यहाँ देखो सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव वगैरह वगैरह आदि अनुयोग द्वार, ये उसके अनुयोग द्वार है। तो मार्गणा का अर्थ हमने दे खोज अन्वेषण, तो जिसमें खोजे जाते हैं उसे मार्गणा कहते हैं, यानी ये 14 गति इंद्रिया आदि मार्गणा बताएंगे और उसमें गुणस्थान कहाँ कौन से मार्गणा पर क्या होता है उसकी भी बात करेंगे, या कौन से गुणस्थान में कौन सी मार्गणा होती है वो भी कहेंगे।
यहाँ पर अभी हाँ। हमने एवं में से
एवं
किया, हाँ वो प्राकृत में नीचे से दूसरे लाइन में एव वही है ना,
वही है, और चतुर्दशी वो भवंती ऐसा भी कहा,
चतुर्दश
14 ही है, और इसमें हिंदी में भी लिखा ना मार्गणा स्थान 14 ही है।
नहीं नहीं, पर अभी यहाँ जो एवं पद
एवकार, हाँ
एवकार के लिए
एवकार एवकार उसके लिए आपको ऊपर रेफरेंस चाहिए, वो एवकार ऊपर लिखा है,
रेफरेंस देना है तो
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्राकृत में नीचे की सेकंड लाइन में एवकार जो है ना, वहां से ये एव पद लिया है, जैसे अ होगा अक्षत उसको अकार कहते हैं, वैसे एवकार लिखा और उसके बदले यहाँ इन्वर्टेड में डाल दिया, वो इसी उसका अर्थ वही हुआ। अब कहा भी है यहाँ 83 नंबर का जो लिखा है उसको देखते हैं, 83 देख के आए अभी हम तो
क्या,
हाँ ये उत्तम चगा था 83 नंबर की, जाहि वजासु जीवा मग्गिज्जन्ते जहा तहा दिष्ठा ताहो 14 जाने सुदनाने मग्गणा होन्ति। ये प्राकृत प्रंच संग्रह है। हाँ अभी वो तीसरा, अभी तो दूसरे सूत्र की चर्चा है, पहला सूत्र है नमोकार मंत्र, दूसरा सूत्र इत्तो इमासिम इत्तो इमेसिम, अभी हमने जो गाथा पढ़ी ना उसका अर्थ देखते नीचे 83 का,
अभी आने का है वो,
वो अभी कहाँ पढ़ा हमने, अभी तो हम गाथा पढ़ रहे हैं, हाँ तो वो होने के बाद उसको पढ़ेंगे। हुआ ना अभी तो दूसरे का सूत्र का, हाँ बस उतना ही उसमें, हाँ एक तो शब्द में उसका पूरा ही ओरिजिन बताया ना उन्होंने। देखो श्रुत ज्ञान अर्थात द्रव्य श्रुत रूप परमागम में जीव पदार्थ जिस प्रकार देखे गए हैं उसी प्रकार से वे जिन नारकत्वादि पर्यायों के द्वारा अथवा जिन नारकत्वादि रूप पर्यायों में, देखो इसमें जिसके द्वारा या जिसमें खोजे जाते उसके दो प्रकार के उसका ये बताया था। देखो समाधान की लाइन देखो लास्ट 132 की लास्ट लाइन, सत्संख्या आदि अनियोग द्वारों के युक्त 14 जीव समास जिसमें या जिसके द्वारा, दो प्रकार से उसकी विभक्ति बताए, नारकादि यानी नारकत्वादि पर्यायों के द्वारा या नारकत्वादि रूप पर्यायों में खोजे जाते हैं। जैसे गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गति जो है वो भेद उसका, तो हम क्या कहते हैं वो नारकत्व पर्याय है, उसके द्वारा हम उन्हें उन जीवों को खोजा जो उस ग्रुप में आ गए। या कहाँ खोजना है जीवों को, नारकत्वादि रूप पर्यायों में खोजेंगे, यानी वो नरक पर्याय के द्वारा हम जीवों को खोजेंगे या नरकादि पर्यायों में जीवों को खोजेंगे, बात एक ही है। कथन पद्धति दो प्रकार से है, उन्हें मार्गणा कहते हैं और वे 14 होती है ऐसा जानो। ये दूसरे सूत्र की यहां तक तो चर्चा हुई, क्योंकि ये मार्गणा हमारा प्रयोजन है और उसमें ये सभी मार्गणार्थ है, वो प्रयोजन के लिए यहाँ जीव समास बताए गए हैं। अब ये जीव समास तो बता दे, तो तम जहां जैसे जैसे ने वे इस प्रकार है, उसका अर्थ क्या है, वे इस प्रकार है, तम जहां वे 14 मार्गणा स्थान जैसे जैसे करके वो आगे नेक्स्ट सूत्र में वो डायरेक्ट बता देंगे कौन से है वो। तत् शब्द पूर्व प्रकरण में आए हुए अर्थ का परामर्शक होता है, क्योंकि सूत्र बड़े बड़े करना ये तो अच्छी बात नहीं कहते, तो उसमें बस तम जहां वे इस प्रकार किस प्रकार है ऐसा, वे ने कौन सभी मार्गणास्थान जिनकी अभी भी चर्चा हो रही थी। तो तत् शब्द पूर्व प्रकरण में आए हुए अर्थ का परामर्शक होता है, परामर्शक ने बताने वाला होता है। इस न्याय के अनुसार तत् इस शब्द से मार्गणाओं के भेदों का ग्रहण करना चाहिए। वो 14 होती है ऐसा वहां बता दिया, तो कौन सी 14 है वो अभी बताने वाले हैं। तो ये सूत्र में प्रश्न किया तीसरे में, चौथे में उसका उत्तर देंगे। जहां इस पद का अर्थ जैसे होता है, वे जैसे इस तरह पूछने वाले शिष्य के संदेह को दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, यानी वो है वो अगर कुछ नहीं, वो कैसे प्रकार के है इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखना वो सूत्र का कार्य नहीं है। हाँ, तम जहां में वे कैसे ये प्रश्न पूछ लिया होगा, या वे जैसे इस तरह से, उसके लिए अभी ये 4 नंबर का सूत्र है। गई इंद्रिय काये जोगे वेदे कसाये नाने संजमे दंसने लेसा भविय सम्मत सन्नी आहारे चेदी। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्य, भव्यत्व नहीं चाहिए, भव्य सम्यक्त्व संगी और आहार। ये 14 मार्गणाएं हैं और इनमें जीव खोजे जाते हैं। मार्गणाएं का अर्थ क्या है, इनमें जीव खोजे जाते हैं। ऊपर तो केवल उनके नाम बताएं, चेदी कहकर बस, अब उसका अर्थ करते हुए इनमें ये मार्गणाएं इनमें जीव खोजे जाते हैं, उन्होंने हिंदी में उसका अर्थ करते हुए लिख दिया है। ये गति के बाद एक कॉमा लगाना था, लगा है कि हाँ, पहले हमने करेक्शंस की हुई है। हाँ, और भव्यत्व के बदले भव्य लिखना अच्छा है। देखो अभी हमने ये 4 नंबर का सूत्र पढ़ा ऊपर और उसका अर्थ भी नीचे पढ़ा है। ये नीचे जो अर्थ है ना वो भव्यत्व के बदले भव्य किया है, गति के बाद एक कॉमा लगा लिया, अब उसका अर्थ नीचे पढ़े। अभी मैं देखा ना हमने क्या बताया था, इसमें खोजे जाते हैं, तो किसमें जीवों को खोजेंगे, गति में इंद्रिय में काय में योग में वेद में, कषाय में, ज्ञान में, संयम में, दर्शन में, लेशा में, भव्य में, देखो ऊपर भी लिखा है ना, लेशायाम भव्य सम्यक संगिनी आहारे वगैरह वगैरह, भव्यत्व नहीं चाहिए, भव्य में चाहिए, सम्यक्व में, संगी में और आहार में जीव समासों का अन्वेषण किया जाता है। हाँ, में लगाया, में लगाया, उसके द्वारा या उसमें, दोनों ओर से में की बात है, कोई एक बताए ना, बारंबार वो दोनों नहीं कहेंगे। तो इनमें जीव खोजे जाते हैं लिखा हमने, तो इनमें जीव समासों का यानी गुणस्थानों का उसमें अन्वेषण होगा, यानी जीवों का ही होगा। इस सूत्र में च शब्द समुच्चयार्थक है, इसलिए प्रत्येक पद के साथ उसका संबंध कर लेना चाहिए। समुच्चय ने उसको इकट्ठा करना, एकत्रित करना, या फिर से ऊपर कहाँ आया च शब्द, देखो चि है ना, लास्ट शब्द है ना सूत्र में, चेदी च इदी, मैं प्राकृत में से पढ़ रही हूँ, चेदी च का अर्थ होता है सभी, ये सभी, उसका समुच्चय रूप अर्थ किया ना, हाँ बरोबर है ना। चेदी शब्द कितने बार आता है, बहुत बार आता है, अभी हाँ, अभी जैसे चे वो शब्द था, च ए वो था, इसे च युदी चेदी, वो प्राकृत है, इदी प्राकृत है, इति संस्कृत है, तो ये च शब्द जो है समुच्चयार्थ, इसलिए प्रत्येक पद के साथ उसका संबंध कर लेना चाहिए। और इति शब्द समाप्ति रूप अर्थ में आया है, यानी गति में और इंद्रिय में और काय में और मयोग में, इस तरह से हम लेते, यानी सबको इकट्ठा किया ना हमने, इन सभी में, इससे यह तात्पर्य निकलता है मार्गणाएं 14 ही होती है, उनके उन्होंने नाम भी उसके बता दिए। च इति मात्र पूरे चैदी का नहीं, इति का, और च शब्द सबके लिए और के लिए, बराबर है, हम कहते हैं ऐसा ऐसा इति इति ने यहाँ हो गया, वो मराठी में आते ना, इसकी इति श्री हुई, यानी क्या उसी समाप्ति हुई, समाप्ति के लिए इति शब्द आता है, और शुरुआत करते अथ शब्द आता है, अथ ने अब, हाँ अभी आगे पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ से ये नक्की हुआ कि ये 14 नाम बताए, ये 14 ही है, ज्यादा नहीं है, 134 पेज पर आ गए हम, 134। शंका, सूत्र में गति आदि प्रत्येक पद के साथ सप्तमी विभक्ति का निर्देश क्यों किया गया है, यानी गति में, इंद्रिय में, काय में, ऐसा हर एक के साथ में क्यों लगाया, उसको सप्तमी कहते हैं। समाधान, उन गति आदि मार्गणाओं को जीवों का आधार बताने के लिए सप्तमी विभक्ति का निर्देश किया गया है, यानी उसमें जीव पाए जाते हैं, इसलिए उसको सप्तमी विभक्ति लगाई। इसी तरह सूत्र में प्रत्येक पद के साथ तृतीया विभक्ति का निर्देश भी हो सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता, यानी इसके द्वारा फिर शंका। जबकि प्रत्येक पद के साथ सप्तमी विभक्ति पाई जाती है तो फिर तृतीया विभक्ति कैसे संभव है? तो कहते ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सूत्र में प्रत्येक पद के साथ जो सप्तमी विभक्ति का निर्देश किया, निर्देशने कथन किया है, वह देशामर्शक है। देशामर्शक यानी अन्य विभक्ति भी लग सकती है। हमने देखा ना, एक का कथन है तो सर्वथा वैसा ही होना ऐसे जरूरी नहीं है। अन्य भी पहले उन्होंने जब मार्गणा की परिभाषा बताई थी, जिसके द्वारा या जिसमें ऐसा कह दिया था, तो हम कोई भी विभक्ति वहाँ यूज कर सकते थे। तो देशामर्शक है, इसलिए तृतीया विभक्ति का भी ग्रहण हो जाता है। अब सूत्रोक्त यानी सूत्र में बताए हुए गति आदि जिन पदों में विभक्ति नहीं पाई जाती है, वहां पर भी आई मध्यम मध्यंत वर्ण सरलवो, क्या कहते हैं, आई यानी आदि, मध्यंत मध्य और अंत में, वर्ण सरलवो वर्ण और स्वर का लोप हो जाता है। क्या कहते हैं, ये कहीं पर भी स्वर और वर्ण का लोप हो सकता है। आई मध्यंत वर्ण सरलवो इति लुप्ता विभक्ति इति अभ्युह्यम, यानी उसका ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। फिर से देखो, अभी सूत्र देखो, गई इंद्रिय के लय में लगाया, काये जोगे वेदे कसाये नाने संयमे दंसने, लेसा में नहीं लगाया, लेसा लगाया, भविय कह दिया, सम्मत्ते नहीं कहा, सम्मत्त लिखा, सन्नी आहारे लिखा, किसी किसी में विभक्ति नहीं लगाई, किसी में लगाई। तो कहते जो आदि में मध्य में अंत में भी किसी अक्षर का या स्वर का लोप हो सकता है। ये प्राकृत के नियम अलग है, संस्कृत के वगैरह अलग होते हैं। तो ये नियम बताए क्या, आई मध्यंत वर्ण सरलवो, अर्थात आदि मध्य और अंत के वर्ण और स्वर का लोप हो जाता है। इस प्राकृत व्याकरण के सूत्र के नियमानुसार विभक्ति का लोप हो गया है, फिर भी उसका अस्तित्व समझ लेना चाहिए। अथवा लेसा भव्य सम्मत सन्नी आहार ये, यह एक पद समझना चाहिए। क्या कहते हैं, वहां से लेकर सबको लिया ना, सूत्र देखो, सूत्र लेसा भव्य सम्मत सन्नी आहार ये, सबको मिलकर ए शब्द लगाए उसमें, तो ये विभक्ति सबके लिए एप्लीकेबल हो सकती है। यानी वो शब्द सबके जोड़कर अगर लिखेंगे तो सब में मिलकर ये मैं शब्द लगाया। इसलिए लेशा आदि प्रत्येक पद में विभक्तियां देखने में नहीं आती। शंका, लोक में अर्थात व्यावहारिक पदार्थों का विचार करते समय भी चार प्रकार से अन्वेषण देखा जाता है। वे चार प्रकार ये है, मृगयिता, मृग्य, मार्गण और मार्गणोपाय। परंतु यहाँ लोकोत्तर पदार्थ के विचार में लौकिक यानी जो लोक में हमने रोज की लौकिक व्यवहार है उसमें, और लोकोत्तर यानी यहाँ जो आध्यात्मिक आगम की बात है उसको लोकोत्तर कहते हैं, अलौकिक कहेंगे। लोकोत्तर पदार्थ के विचार में वे चारों प्रकार नहीं पाए जाते हैं, इसलिए मार्गणा का कथन करना नहीं बन सकता। देखो, मार्गणा यानी अभी हम जिसको खोज रहे हैं ना, तो खोजने वाला भी चाहिए, जिसको खोजना है वो भी चाहिए, वो खोज भी चाहिए और खोज का उपाय भी चाहिए, ठीक है ना। मृगयिता खोजने वाला, मृग्य जिसको खोजना है, मार्गण यानी खोज, और मार्गणोपाय उसका उपाय। ऐसे लौकिक में तो उसके पाए जाते हैं, परंतु यहाँ तो बाकी कुछ नहीं लगाए। तो कहते ये कथन बराबर नहीं हो सकता, बन नहीं सकता। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में भी वे चारों पाए जाते हैं, वे इस प्रकार है। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करने वाला भव्य पुंडरीक मृगयिता अर्थात लोकोत्तर पदार्थों का अन्वेषण करने वाला है, जैसे समझे नहीं, ज्ञाता वैसे मृगयिता खोजने वाला अन्वेषण करने वाला भव्य जीव जो है उसको यहाँ लिया कि जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करने वाला भव्य जीव। अभी मृग्य 14 गुण स्थान भव्य पुंडरीक भव्य जीव ही लेना उसको पुरंदर कहें। ऊपर तो बताया भव्य, नीचे भव मृगयिता भव्य वर पुंडरीक गुरु शिष्यो वा, गुरु भी हो सकता है शिष्य भी हो सकता है। अब मृग्य कौन है जिसको खोजना है, तो 14 गुण स्थानों से युक्त जीव। देखो 135 पेज पर है, 14 गुण स्थानों से युक्त जीव मृग्य अर्थात अन्वेषण करने योग्य है। खाली जीवों को नहीं, वो किससे, 14 जीव समाज को हमने खोजना है ना, वो 14 गुण स्थान से युक्त जीवों को खोजना है, और वो हम गतियों में खोजेंगे, इंद्रियों में खोजेंगे सब। तो ये हो गया मृग्य। हाँ वो तो हमने उसमें क्या कहते हैं, एक मार्गणा में हम अन्य मार्गणाओं को अप्लाई करते हैं, यहाँ तो मार्गणाओं में गुणस्थान से युक्त जीवों को लगाना है, यानी मार्गणा स्थानों पर केवल गुणस्थानों को लगाना है, और वहाँ हम एक एक मार्गणा पर अन्य 19 यानी 20 प्ररूपणा है, वहाँ उसमें गुणस्थान नाम की एक प्ररूपणा है, मार्गणा भी है 14, 20 प्ररूपणा टोटल लग, ख्याल में है कि भूल गए, 100 जीव स्थान है, सॉरी ये तो गुणस्थान है, जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा ये फिर 14 मार्गणा है, और लास्ट में उपयोग। तो जीव कांड में वो 20 जो प्ररूपणा है, जैसे गुणस्थानों में हम सारे 19 लगाएंगे, प्रत्येक गुणस्थान में कौन से जीव समास है, कौन से पर्याप्ति कितनी है, प्राण कितने हैं, उपयोग कितने हैं, वो सारे बात से लगाएंगे। फिर जीव समास में गुणस्थान भी लगाएंगे, सारी बाकी सब बातें, वो सारे 20 के जो 20 है वो एक में सारा ही अप्लाई करना अन्य 19 को, वो है वो 100 पेजेस, वो बात अलग है। यहाँ मात्र 14 गुणस्थानों को हम मार्गणाओं में लगा रहे हैं, यानी गुणस्थान और मार्गणाओं का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, उसमें एक दूसरे में एप्लीकेशन है। 14 जो भेद किए हमने उसमें हम गुणस्थानों को लगाएंगे। जो मृग्य अर्थात 14 गुणस्थान विशिष्ट जीवों के आधारभूत है, अर्थात अन्वेषण करने वाले भव्य जीव को अन्वेषण करने में अत्यंत सहायक कारण है, ऐसी गति आदि मार्गणा है। मार्गण शब्द बताया ना, मार्गणा, मार्गण शिष्य और उपाध्याय आदि मार्गणा के उपाय है। मार्गणा के उपाय ने भी ये अन्वेषण करना है, वो कौन कर रहे हैं या कौन उसके उपाय क्या है, तो उपाध्याय आदि शंका। समझ में आई बात, चार कौन सी, मृगयिता है ना मार्गणा करने खोज करने वाला, मृग्य ने जिनकी खोज करना है, किसकी करना है, गुणस्थान युक्त जीवों की। ये मार्गणा क्या है, ये जो 14 जो है, और मार्गणा का उपाय क्या है, उपाध्याय आदि। शंका। इस सूत्र में मृगयिता मृग्य और मार्गणोपाय इन तीन को छोड़कर केवल मार्गणा का ही उपदेश क्यों दिया गया है? इन्हें तो 14 मार्गणा ही बताए केवल, वो मार्गण या मृगयिता मृग्य आदि की कोई की चर्चा ही नहीं की इसमें। समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गति आदि मार्गणावाचक पद देशामर्शक है, इसलिए इस सूत्र में कही गई मार्गणाओं से तत्संबंधी शेष तीनों का ग्रहण हो जाता है। जैसे हमको दान देना है तो दान देने वाला भी है ना, दाता, वो पात्र भी है। जैसे हम मृगयिता मृग्य कहा, वैसे दाता और उसका लेने वाला, वो जिसको दिया जाता है वो पात्र, दान जो द्रव्य है और वो जो क्रिया है, ऐसे उसमें भी बातें होगी। तो जब हम यहाँ बता देते हैं, मार्गणा बताई है, तो उसमें ये सब गर्भित है, उसको कहते हैं देशामर्शक। देखो सूत्र में कही गई सेकंड लाइन समाधान की, मार्गणाओं से तत्संबंधी शेष तीनों का ग्रहण हो जाता है। मार्गणा के नाम बताए, उसमें मृगयिता मृग्य और मार्गणोपाय गर्भित है, उसका ग्रहण हो जाता है ना, वो जाने जाते हैं। अथवा मार्गणा पर शेष तीनों का अविनाभावी है, यानी मार्गणा कहने से वो तीन उसमें आ ही गए, इसलिए भी केवल मार्गणा का कथन करने से शेष तीनों का ग्रहण हो जाता है। अब जो हमने 14 नाम देखे हैं उसकी बात बताएंगे। गति आदि जो नाम बताए ना मार्गणा के, जो प्राप्त की जाए उसे गति कहते हैं। गति का ऐसा लक्षण करने से सिद्धों के साथ अतिव्याप्ति दोष भी नहीं आता, क्योंकि सिद्धों के द्वारा प्राप्त करने योग्य गुणों का अभाव है, यानी सिद्धों को अभी कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं है। यदि केवल ज्ञानादि गुणों को प्राप्त करने योग्य कहा जावे सो भी नहीं बनता, क्योंकि केवल ज्ञान स्वरूप एक आत्मा में प्राप्य प्रापक भाव का विरोध है, यानी एक ही आत्मा में अन्य बाहर से तो कुछ प्राप्त नहीं करना है, तो उसमें भी वो बात नहीं बनती। उपाधि जन्य होने से कषायादिक भावों को ही प्राप्त करने योग्य कहा जा सकता है, परंतु वे सिद्धों में पाए नहीं जाते हैं, इसलिए सिद्धों के साथ तो अतिव्याप्ति दोष नहीं आता। अतिव्याप्ति दोष समझते हैं, हाँ हाँ, ज्यादा में पाया जाए। देखो जो लक्षण होना चाहिए वो कौन से दोषों से रहित होना चाहिए मालूम है आपको? यह एक दोष बताइए अतिव्याप्ति, और दूसरा कौन सा दोष मालूम है? अव्याप्ति। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये दोष है लक्षण में, ये नहीं होने चाहिए। ये हो जाए तो उसको लक्षणाभास कहेंगे, वो सही लक्षण नहीं है। ये अव्याप्ति क्या होता है और अतिव्याप्ति क्या है? जैसे हम कहेंगे ना, हमें कोई किसी चीज का लक्षण बांधना है तो क्या जरूरी है वो जितने, वो जिसको हम लक्षण बांध रहे हैं वो पूरे में वो पाए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, वो जो जिसका लक्षण बांध रहे हैं बस उसी में होने चाहिए और अन्य में नहीं होने चाहिए। जैसे हमने कहा सिंह, ये गाय का लक्षण है, तो क्या होगा? अरे दूसरे भी सिंह वाले प्राणी, भैंस भी है, हरिण भी है, और कितने ही लोग अन्य को सिंह होते हैं, तो कहते वो तो क्या हुआ? अति व्याप्ति। तो हमने कहा वो सफेद वो गाय, तो क्या होगा? अरे क्या, गाय तो काली भी होती है, लाल वाली रंग की भी होती है, अन्य अन्य, ऐसा हम कहेंगे। हाँ वो तो अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोनों भी हो जाएगी, दोनों ही हो जाएगी, तो वो भी उसमें लक्षण नहीं बनता। हाँ अव्याप्ति, जैसे मति ज्ञान जीव का लक्षण कहेंगे या केवल ज्ञान जीव का लक्षण कहेंगे जो पर्याय वाला है, तो वो तो सबने तो प्रकट नहीं है। अमूर्ति को जीव का लक्षण है वो कहेंगे तो क्या होगा? जीव तो अमूर्तिक है, हाँ तो बराबर होगा ना, अन्य किसी में नहीं चाहिए। वो धर्म में भी है, अधर्म भी, आकाश में भी है, काल में भी, तो क्या होगा? अति व्याप्ति दोष होगा। समझ में आई बात? तो लक्षण ऐसा चाहिए। अभी हम कहेंगे जीव है ना, वो काला गोरा होता है, तो क्या होगा? तो कौन सा दोष? असंभव दोष, वो है ही नहीं उसमें, ये असंभव दोष। तो इन दोषों से रहित ऐसा लक्षण बांधना चाहिए। यहाँ क्या कहते हैं कि गति यानी जो प्राप्त की जाए उसको गति कहेंगे। तो कहते हैं कि गति ऐसा तो सिद्धों के साथ अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी सिद्धों के लिए प्राप्त करने योग्य कुछ किसी गुण को प्राप्त करना ये तो नहीं हो सकता। अब कहेंगे केवल ज्ञान आदि गुणों को प्राप्त योग्य कहने योग्य कहाँ? तो कहते नहीं, वो तो आत्मा में ही होते, उसको बाहर से कहीं प्राप्त नहीं होता। प्राप्त करने में भी उसके कुछ जैसे उपाधि वाले भावों को भी प्राप्त करना कहेंगे, कषाय वगैरह है उसको तो कह सकते, उसको मार्गणा में ले लिया। कषायधिक भावों को ही प्राप्त करने योग्य कहा जाता है, परंतु वो सिद्धों में नहीं है, इसलिए सिद्धों के साथ अतिव्याप्ति दोष नहीं आता। फिर शंका, जो प्राप्त की जाए उसे गति कहते हैं। गति का ऐसा लक्षण करने पर गमन रूप क्रिया में परिणत जीव के द्वारा प्राप्त होने योग्य द्रव्यादि को भी गति यह संज्ञा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि गमन क्रिया परिणत जीव के द्वारा द्रव्यादि ही प्राप्त किए जाते हैं। जो प्राप्त होता है ना, जो नहीं था और मिला, जिसे गमन क्रिया परिणत जीव, आप यहाँ से कहीं दूर जा रहे, कहाँ, पूना की तरफ जा रहे, बीच में वो लोनावाला स्टेशन आया तो वो प्राप्त हुआ ना हमको, हमारे पास नहीं था। इसलिए कहते गमन परिणत जीव के द्वारा जो अन्य अन्य द्रव्य उसको प्राप्त हो गए उसको भी गति कहना चाहिए। तो कहते ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गति नाम कर्म के उदय से जो आत्मा के पर्याय उत्पन्न होती है वह आत्मा से कथनचित भिन्न है, अतः उसकी प्राप्ति अविरुद्ध है। गति नाम कर्म के उदय से आत्मा के जो पर्याय उत्पन्न होते, आत्मा की पर्याय की बात ली है, बाह्य कौन से संयोग में जाता है उसकी बात नहीं की, आत्मा की भी, मनुष्य गति नाम के आत्मा के भी कुछ वहां भाव विशिष्ट होते हैं उसकी बात है। वह आत्मा से कथनचित भिन्न है, अतः उसकी प्राप्ति अविरुद्ध है, यानी उसकी प्राप्ति उसको तो हम कह सकते हैं, और इसीलिए प्राप्ति रूप क्रिया के कर्मपने को प्राप्त नारकादि आत्म पर्याय के गतिपना मानने में पूर्वोक्त दोष नहीं आता। क्या कहना चाहते हैं? ये आत्मा की भी पर्याय हो रही है ना उसमें, ये मनुष्य पर्याय, वो केवल मनुष्य पर्याय ने वो जिसको हम कहते हैं ना असमान जाति द्रव्य पर्याय, उसकी बात नहीं कर रहे, वो जीव और देह मिलकर जो कुछ हो रहा है उसकी बात नहीं है यहाँ पर, उस मनुष्य पर्याय की बात नहीं कर रहे। मनुष्य पर्याय ने जीव के अपने भाव, वहां मनुष्य जैसे है उसको यहाँ गति को ले लिया। हाँ, अथवा एक भव से दूसरे भव में जाने को गति कहते हैं। पूर्व में जो गति नामा नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय विशेष को, पर्याय विशेष है ना मनुष्य नारद देव तिर्यन, अथवा एक भव से दूसरे भव में जाने को गति कहे आए हैं, ठीक इससे विपरीत स्वभाव वाली सिद्ध गति होती है। अब ये वाक्य और उसके जो उक्तम च गाथा है वो कल पढ़ेंगे हम, यहाँ से फिर देते हैं। अथवा एक भव से जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवानी मस्तकनम सदा देत हो। अश्विन भाई।